ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विजे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकाशया जिहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनयम् तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मां चरणं कृते तत्कृतम् अपने परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अश्रुत शस्त्र भक्ति प्रज्ञान के गौर स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी गण वैष्णव वैष्णवी श्रोतागण यथाजोग मेरा अभिनंदन स्वीकार कर अभिवादन स्वीकार कर। कल कथा हुई और कथा के बाद में बेस जोरों से दृष्टि आई। हरि कथा का लक्षण है शुभ लक्षण, जहां पानी ना हो वहां पर पानी भी बरसने लगता है, इसलिए मैं इसे शुभ ही समझता हूं। कि किंतु ये स्थान थोड़ा सा नीचा है, जैसा आप देख रहे हैं सड़क और चारों तरफ में ऊंचाई है, पानी भर गया। चिंता हुई आज हरि कथा किस पंडाल में होगी, किंतु इन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है जो अपने चाय की प्याली अपने टेबल तक नहीं लाते, दूसरे लाते हैं और वे लोग वर्षा के जल में भी अपने पसीने के जल से तर बतर हो गए और यहाँ का पानी करीब करीब कितना हजार लीटर बड़ी मुश्किल से यहाँ से पंडाल से बाहर की तरफ निश्चय किया, अन्यथा आज इस पंडाल में आप लोग हरी कथा श्रवण का सुयोग नहीं पाते। इसलिए इन कार्यकर्ताओं को मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि ये लोग हरि कथा के लिए इतने समर्पित हैं, भगवान कथाओं के लिए तो भगवान इन पर कृपा करे, ये कथा इन पर कृपा करे। अब मैं कथा की ओर आता हूँ। आप लोग सब लोग मेरे साथ में गोकुल में पहुंचिए। कल मैंने भक्ति की परिभाषा में बतलाया था, तन से मन से वचन से इसके अतिरिक्त भावनाओं के द्वारा कृष्ण के लिए नैरंतर्यमयी अनुकूलमयी सेवा प्रचेष्टा को भक्ति कहते हैं। किंतु उसके अनुसंगिक दो लक्षणों के द्वारा कोई भी संसारी कामना वासना न हो, इसलिए अन्याभिलाषिता शून्य कहा गया। अन्याभिलाष शून्य क्यों नहीं कहा गया? जो अन्याभिलाषिता कहा गया, सब्जेक्ट बहुत गंभीर है तो भी आप लोग ध्यान से श्रवण करने की चेष्टा करेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे। यदि कहीं नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ये तो एक तरह से इष्ट गोष्ठी है, ऐसा नहीं कि आप लोग बोल ही नहीं सकते। तो यदि स्वाभाविक स्थिति में आप हो, जैसे अभी है स्वाभाविक स्थिति, उस स्थिति में अभिलाषा है, तब तो बहुत खतरनाक है, वो भक्ति को नष्ट करती है, उसको सकाम या दूसरी भक्ति बना देती है। किंतु अस्वाभाविक स्थिति में भगवान से कुछ प्रार्थना हो तो वो भक्ति नष्ट नहीं होती। जैसे द्रौपदी जी, उनका वस्त्र हरण हो रहा है, दुशासन 60,000 हाथियों का बल लेकर चैर चीर को खींच रहा है, नंगी करके दुर्योधन के जंघ पर बैठलाएगा, वो भी सभा में जहां पर भीष्म द्रोण और पांडव सब लोग वहां पर भरे पड़े हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक स्थिति रहना मुश्किल है। उस समय में उसने हाथ उठाकर हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, ये भक्ति का दोषण नहीं है। किंतु स्वाभाविक स्थिति में यदि हम कहें हे प्रभु हमें धन दीजिए, जैसे ध्रुव महाराज जी हैं और लोग हैं, हम लोग भी हैं, स्वाभाविक स्थिति में भगवान से कुछ धन जन पुत्र परिवार आरोग्य इत्यादि की प्रार्थना करते हैं, वो भक्ति के लिए अशुभ, वो नहीं होना चाहिए। ज्ञान और कर्म से ढकी हुई भक्ति होने नहीं चाहिए। तात्पर्य क्या, जब तक जीवन है शरीर है तब तक कर्म अपरिहार्य है, कर्म करना ही पड़ेगा। बिना ज्ञान का एक मिनट नहीं आप चल सकते। किंतु समझिए ये कर्म किसको कहते हैं। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, उसमें कर्म कहां है? कर्म नहीं है, मैं आम खा रहा हूं। ना मैं आम खा रहा हूं, क्या खा रहे हो, किसके लिए खा रहे हो? अपने लिए आम खा रहे हो, ये हुआ कर्म। और मैं केवल खा रहा हूं, इसमें कर्म नहीं है। इसलिए सारी क्रियाएं जो अपने लिए करते हैं तो ये कर्म हुआ। और वही क्रिया यदि भगवान के लिए कर रहे हैं, बाजार जा रहा हूं वहां से फल लाऊंगा, भगवान का भोग लगाऊंगा, ये भी कर्म है, किंतु भगवान के उद्देश्य से हो रहा है। इसलिए जो भी कर्म हो, गीता में जैसे बतलाया गया है, क्या है, जग करोसी जदश्नासी यज्ञ होसी तदाश्यत यत् तपस्यस कौन थे तत्पुरुष माता। जो कुछ भी करो मेरे लिए करो। तो यदि वही कर्म भगवान के लिए करके उसका प्रसाद लीजिए, कर्म का कर्मत्व खत्म हो जाता है, जीवन मरण से वो आदमी मुक्त हो जाता है। यही कर्म का कौशल है। इसलिए कोई भी कर्म अपने लिए मत करो, भगवान के लिए करो। प्रसाद तो रखेंगे, प्रसाद से भरण करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, वो पूरा तृप्त होकर के खा करके तुम्हारे लिए रख देंगे। ये मत सोचो देखो जो उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं, उसके अंदर में जो प्रेम छिपा हुआ है उसको वो ग्रहण करते हैं। विदुरानी के घर में गए, दुर्योधन के घर में तरह तरह के मेवा रखे गए हैं, उनको नहीं खाया नहीं लिया, और विदुरानी के घर में गए तो विदुरानी ने प्रेम से केले के छिलकों को खिलाने लगी और उसके भीतर के गुदे को फेंकने लगी। विदुर नहीं थे, विदुरानी। विदुर जब आए लौट करके देखा, अरे ये छिलके खिला रही है, होश नहीं। कृष्ण बोले जे चुप रहो, द्वारका में 60,000 रानी, कितनी
16,108
रानियां जो देती हैं, खिलाती हैं, उसमें मुझे इतना प्रेम नहीं आ रहा जितना कि आज छिलके से मुझको प्रेम मिल रहा है। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, प्रेम की जरूरत है, प्रेम के द्वारा ही वशीभूत होते हैं। इसलिए कर्म के द्वारा ढकी हुई भक्ति ना हो। संसारी हम जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा भगवान मिलेंगे, मिल जाएंगे। माता पिता की सेवा से, गरीबों की सेवा से और जो समाज के कार्य हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से भगवान की सेवा ही है, बात तो ठीक है, किंतु माम एव जे प्रपद्यन्ते, माम एव, एव माने मुझे ही, भगवान को देने से जगत की तृप्ति हो जाती है, ऐसा विश्वास रखो। एक एक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते, एक बच्चे को भी प्रसन्न नहीं कर सकते, और तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, जहां उन्होंने भोग लगाया जगत की, सारी जगत की तृप्ति हो जाती है। इसलिए भक्ति कर्म और ज्ञान के द्वारा भी ढकी नहीं हो। जब ये सब कर्म करने से तभी भगवान की कृपा मिलेगी, भक्ति होगी। भक्ति स्वतंत्र अवलंबना, भक्ति स्वतंत्र है। ये किसी कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, व्रत, होम, साध्याय, संयम, इसके वशीभूत नहीं है। ये तो हुआ इधर। अनुकुल्य में कृष्ण अनुशीलनम में एक प्रश्न उठता है, कृष्ण के लिए भक्ति रोचमाना होनी चाहिए और अनुकूल रूप में होनी चाहिए, ये परिभाषा है। रोचमाना माने क्या? भगवान को रुचने वाली, अच्छी लगने वाली, तृप्ति करने वाली होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए लेते हैं, जसोदा मैया दधि मंथन कर रही थी और दधि मंथन करते 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 बाल कृष्ण अपने बिस्तर से उठे और मैया कहाँ है खोजने लगे। देखा जब मैया तो है नहीं, देखा जो दूर में दधि मंथन कर रही, रोने लगे, किंतु मैया तो मस्त थी कीर्तन करने में। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तन में थी, कैसा सुरीला तान होगा, गला कैसा होगा, जिसका बेटे का भी ऐसा ही है, कैसे सुंदरी होगी जिसका बेटा इतना विश्व ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। तो इस प्रसार से जब कीर्तन कर रही थी, कृष्ण पीछे से आए, छोटे अभी बालक हैं, अभी पैरों से चलना नहीं ठीक से चला है, और पीछे से उनका केस पकड़ लिया और एक हाथ से दधि मंथन दंड पकड़ लिया। जो सौदा मैया ने देखा लाला रो रहा है, झट गोदी से उठाया और बिठा करके स्तन पान कराने लगी, फिर तो बीच ही में देखा ये दूध उफन रहा था। यशोदा जी ने देखा, अरे दूध उफन करके आग में गिर रहा है, मानो दूध कर रहा है। यदि मैं भगवान की सेवा में नहीं लगा तो प्राण रखने की जरूरत क्या, उस जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। यशोदा मैया के स्तनों में खीर समुद्र का सारा जितना दूध है वो सब यशोदा मैया के स्तन से आता है, और कृष्ण लंबोदर है, अखिल विश्व ब्रह्मांड उनके पेट में है, पेट इतना बड़ा है कि समस्त विश्व का सारा दूध पी जाने पर भी उनका पेट नहीं भरेगा। तो आखिर हम लोग तो किसी काम में आएंगे नहीं, यशोदा का दूध पीते रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक पीते रहेंगे, न उनकी भूख समाप्त होगी न यशोदा मैया का दूध समाप्त होगा। यशोदा मैया भक्त हैं, बड़ी दयालु हैं। नहीं नहीं, पहले तुमको सेवा में लगा करके तब मैं लगूंगा, अपने सेवा में अपने में करूंगा। इसी प्रकार से गुरु अपने आश्रितों को पहले भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं, उनको अवकाश देते हैं और तब फिर अपनी सेवा करते हैं। यहां पर जो यशोदा मैया कृष्ण को रोता हुआ छोड़ करके चली गई दूध बचाने के लिए, अरे दूध किसके लिए, कृष्ण के लिए दूध है ना दूध के लिए कृष्ण है, दूध तो आखिर कृष्ण के लिए है। और यशोदा मैया उस कृष्ण को ठेल कर 60,000 हाथियों का बल पूतना का अपने स्तन से कृष्ण को नहीं हटा सकी। और यहां यशोदा मैया कृष्ण ने चिपक कर बंदर की तरफ उनके स्तन को पकड़ रखा है, मुख से पकड़ रखा है, जोर से पैर से पकड़ रखा और उसको कहा बैठो, अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक प्रभु अघटन घटीय श्री पशु प्रभु बेचार लाचार होकर के बैठ गए, बल कोई काम नहीं आया यशोदा मैया के बल के सामने। अब यहां पर कृष्ण रो रहे हैं, यही नहीं पीछे से यशोदा मैया लठिया लेकर के धमका रही है, किसको, उस ब्रह्मांड पति को, मारू मारू बंदर के बंदर बंधु बंदर के मित्र उनको खिलाता है, मारू। और कृष्ण पीछे भागते हैं, कृष्ण रोते हैं। ये रोना कृष्ण को रुचकर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, यदि अच्छा लगता तो रोते क्यों, ये नाटक ही नहीं अभिनय नहीं है, यथार्थ ये बात। कृष्ण रो रहे हैं, कौन, अखिल कोटि विश्व ब्रह्मांडों का रचयिता जो ईश्वर है, उन ईश्वरों के भी स्वयं ईश्वर परमेश्वर है, आज रो रहे हैं। तो यह रोना उनको रुलाना क्या भक्ति है, तो यशोदा मैया की कैसी भक्ति जो कृष्ण को रुला रही है। तो ये भक्ति की हो है या नहीं है ये प्रश्न है, कृष्ण को रुलाना तो भक्ति नहीं हो सकती है, नहीं
भक्ति है।
अनुकूल लेने कृष्ण अनुशीलन, यशोदा मैया भविष्य देखती हैं, अभी इसी अवस्था में चोरी करता है, घरों घरों में जाता है, मक्खन चुराता है, तो इसको शासन करके ठीक करेंगे, ये आगे जब बड़ा हो तो ऐसा ना रहे। किसी ने कह दिया अरे वो भगवान है, और यही नहीं कृष्ण ने अपने मुख में विश्व ब्रह्मांड दिखलाया जो अर्जुन को दिखलाया था, एक एक बार नहीं दो दो बार, किंतु यशोदा मैया ने देखा कि अरे इसको भूत लग गया है ना, क्या हो गया, मुझे तो भूत लग गया, और काली गैया का गोबर और मूत्र लेकर के उनको अभिषेक करा करके ब्राह्मणों को गाय दान, भगवान की बुद्धि नहीं आई, इसलिए भक्तों का यह भाव होता है कृष्ण को कृष्ण उतना प्यारा नहीं है जितना कि उसके वस्तुएं प्यारी होती हैं। समझो इस चीज को। कृष्ण को नया कपड़ा पहना दिया यशोदा मैया ने, बाल संवार दिए, बड़ा सुंदर बनाया, मोर मुकुट यहां मोर का पंख लगा दिया, और कृष्ण धूल में खेलते खेलते सबको फिर गंदा कर दिया। यशोदा मैया ने गाल पर, उस ब्रह्मांड पति के गाल पर एक थप्पड़ जप दिया। ये भक्ति हुई, कृष्ण वो आकर के रोने लगे। भगवान को जीजे जो चीजें प्यारी होती है, भक्तों को वो चीजें प्यारी होती। जैसे देखो, कृष्ण को सबसे सबसे प्यारा या प्यारी क्या चीज हो सकती है? अधिक से अधिक राधा जी से प्यारी कृष्ण को और कोई है? नहीं। इसलिए माँ यशोदा राधा जी को कृष्ण के समान भी प्यार करती है। इसलिए भक्तों के इस्तेमाल में जो वस्तुएं आती हैं, कृष्ण के सेवा के लिए जो चीजें होती हैं, यशोदा मैया सोचती हैं हमारे दूध से रसगुल्ला तो बनेगा नहीं, फूल चांद तो बनेगा नहीं, संदेश तो बनेगा नहीं, राबड़ी बनेगी नहीं, तो कृष्ण का भोजन कैसे होगा? इसलिए दूध को रक्षा करने के लिए जाती है। ये भक्ति का विचार है। इसलिए इन विचारों को रख करके जो भजन करते हैं वो शुद्ध और उत्तम भक्त होते हैं। एक कीर्तन थोड़ा सा गोविंद दामोदरी बोले
बोलिए श्रृंगारण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
गोविंद बोलो हरि
मंडल माही बसा। संग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो, इस प्यारे की झांकी निहारा करो, इस प्यारे की झांकी निहारा करो, सभी छाती से नाथ छकाए रहो, मेरे दिन और बिहारी
का परिभाषा की परिभाषा बतला रहा था। उसमें देह की सारी इंद्रियों की चेष्टा और भावना सभी भगवान के लिए लगनी चाहिए। भगवान की उस सेवा में ममता जितनी अधिक होगी भक्ति इतनी अधिक होगी। ममता के ऊपर में निर्भर है भक्ति, ममता है संबंध के ऊपर में निर्भर। भगवान के साथ में हमारी जीवात्मा का कोई न कोई एक पारमार्थिक संबंध है। गुरु उस संबंध को प्रदान करते हैं और उस संबंध से युक्त हो करके भगवान में ममता के साथ में जब सेवा होती है तो भगवान उस चीज को ग्रहण करते हैं। ममता नहीं है भक्ति नहीं है, संबंध नहीं है ममता नहीं है। यदि ध्रुव जी हैं इस परिभाषा के ऊपर में कसौटी करें। उन्होंने अपने लिए मांगा, भगवान की कोई के प्रति कोई सेवा चेष्टा नहीं देखी गई। भगवान को प्राप्त होकर के दर्शन प्राप्त करके उन्होंने भगवान की कौन सी शारीरिक मानसिक भावना से कौन सी सेवा की नहीं की। इसलिए प्रहलाद महाराज जी उनसे श्रेष्ठ। प्रहलाद महाराज जी का संक्षेप में जीवन चरित्र और कैसे भगवान को प्राप्त किया, कैसे जीव मात्र में भगवान को दर्शन करते हैं, उनके भक्ति के विचार क्या हैं, हमारे श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी संक्षेप में कुछ बोले।
ज्ञानांजन सलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित फल लभ बल हरि के राधा पदांक विलस मधुरास्थली के राधांज समुखम खंगांग बलि के राधा विहार विभिने रमतांग मनोमे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्मनि कलिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सदा श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण सरज में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अस्मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परिप्राजिका आचार्य त्रिदंड स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों के चरण में जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। श्रील महाराज जी मुझे आदेश दिए हैं श्री प्रहलाद महाराज का दिव्य चरित्र के ऊपर में और वे कैसे जीवन में भगवत भक्ति और भगवान को संतुष्ट किए हैं उसी को ऊपर में कुछ बताने के लिए। आप लोग जानते हैं प्रहलाद महाराज कैसे 5 साल उम्र से ही उन्होंने भगवत भक्ति की आरंभ की। जिस समय भगवान बरहा अवतार में हिरण्याक्ष को वध किया तो उनको भैया जो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ, तब ये हरि बड़ा दुष्ट है, ये देवताओं को पक्ष लेकर के हर समय दैत्यों को बध करते रहते हैं, इसलिए हुए अपना जीवन में ब्रह्मा जी की उन्होंने कठोर तपस्या की। ऐसे उन्होंने कठोर तपस्या किया जिसको तपस्या से संतुष्ट होकर के स्वयं ब्रह्मा जी उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी जब उनको दर्शन दिए कहते वत्स तुम क्या चाहते हो। वो चाहते थे मैं अमरत्व को जीवन में प्राप्त करूँ, इसलिए ब्रह्मा जी से हुए अमरत्व को उन्होंने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तभी मैं अमरत्व को तुमको दे सकता हूँ अगर मैं स्वयं अमर हूँ तो, लेकिन मैं भी स्वयं अमर नहीं हूँ, इसलिए जब तक मैं केवल मेरा उम्र 100 साल है, 100 साल के बाद में मेरे को भी ये ब्रह्म लोगों से मेरा भी च्युत होता है। मैं जब स्वयं अमर नहीं फिर तुमको अमरत्व कैसे प्रदान कर सकता हूँ, तुम और कुछ मांगो। उन्होंने देखा ये तो अमरत्व देंगे ही नहीं, लेकिन ऐसे कुछ बार प्रार्थना करता हूँ जैसे मैं अमर बन जाऊँ। तो उन्होंने बोला यह वर दीजिए मैं दिन में नहीं मरूँ, रात में नहीं मरूँ, आकाश में नहीं मरूँ, मर्त्य में नहीं मरूँ, घर में नहीं मरूं, बाहर में नहीं मरूं, किसी महीना में नहीं मरूं, और जितने तरह का मृत्यु का जो कारण था उन्होंने सब को उन्होंने वरदान रूप में ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा एक एक करके वर देते गए। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा ये तो मेरे को अमरत्व देना नहीं चाहते थे, लेकिन पक्षांतर में मैं तो स्वयं अमर ही बन गया। जब दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, पाताल में नहीं मरूं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, किसी महीना में नहीं, आपका किसी सृष्ट प्राणी पर द्वारा नहीं, फिर तो मैं अमर ही तो बन गया ना। इसलिए बड़ा खुश होकर के और आया आ करके उन्होंने इतने उत्पात उन्होंने मचाया, सारा दुनिया में उन्होंने हिल डोल उन्होंने मचा दिया सारा दुनिया में। और उन्होंने जब तक तो कोई एक सौ राजस्व यज्ञों को नहीं करता है तब तक वह स्वर्ग लोकों में इंद्र पद में नहीं बैठ सकता। लेकिन हिरण्यकश्यप का इतना प्रताप था, एक सौ अश्वमेध यज्ञ किए बगैर हुए हमारे इंद्र पद में जाकर बैठ गया और वहां से सारे देवता को भगा दिए। सारे देवता परेशानी होकर के ब्रह्मा जी को पास में गए, फिर शंकर जी को पास में गए। जब फिर समुद्र को पास में जाकर के नमो नमो करते हुए भगवान की वह स्तुति की, भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, तभी मैं प्रकट हूंगा जब मेरी किसी भक्त को ऊपर में वो अत्याचार करे। इसलिए अभी उसको पुत्र रूप में मेरा अत्यंत प्रिय भक्त श्री प्रह्लाद महाराज जन्म ग्रहण करने वाले, जब वो प्रह्लाद को ऊपर में कोई आक्रमण करेगा, सताएगा, तो मैं स्वयं में प्रकट लूंगा। इसलिए उनको पुत्र रूप में श्री प्रह्लाद महाराज जन्म हुए। आप लोग जानते हैं प्रह्लाद महाराज का जीवन है, उनका दिव्य चरित्र है। जब उन्होंने उसको लेखा पढ़ा सिखाने के लिए उन्होंने संधा और अमर को पास में भेजा, अभी बीच में छुट्टी में, खेल छुट्टी में जब उनको टीचर चले गए अपना घर में, अभी बच्चे लोग खेलने के लिए निकले, प्रह्लाद महाराज ने कहा देखो बच्चों आज एक नया खेल खेलेंगे। बच्चे तो खुश हो गए, बोलते नया खेल खेलेगा, ये कौन सा खेल है, तो प्रह्लाद कौन सा खेल है। तो उन्होंने ऐसे मजिया और ढोलकी लिया, ले करके उन्होंने बोला हरि कीर्तन करेंगे। फिर तो बड़े सुंदर उन्होंने हरि कीर्तन किया, बोले जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय आ गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। जब उन्होंने बच्चों को बोला हरि कीर्तन करो, बच्चों ये जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है, इसी जीवन पा करके हरि की भजन करनी चाहिए। बच्चों ने प्रश्न किया प्रह्लाद हमने सुना है भगवत भजन रिटायर्ड लाइफ में करते हैं, जब सारे काम में रिटायर्ड हो जाए तभी तो भजन करते हैं, हमने ये सुना है अभी तो केवल हम 5 साल के ही है और तुम बोलते हो अभी से भजन करना करो। तो प्रह्लाद महाराज इतने सुंदर उन्होंने कथा सुनाया, कहते कौमार आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवता निह दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अधुर्वम अर्थदम। कहता बच्चों बुढ़ापा में भजन नहीं होता, हमें उन्होंने पूरा मना ही कर दिया। भगवत भजन तो कौमार, कौमार मतलब 5 साल से ही हरि की भजन करनी चाहिए। बच्चों ने कहा प्रह्लाद क्यों बचपन से क्यों भजन करनी चाहिए। तो बच्चों दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये जो मानव जन्म है 184 भ्रमि के ये नरतन दही। ये इंसान का जीवन 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते कत जल जा नव लक्षाणी, कत पानी में 9 लाख बार जन्म होता है। क्रिमयम रुद्र संख्यकम, जितने कीड़ा मकोड़ा 11 लाख बार, 300 लक्षाणी पशव, जितने तरह का पशु 30 लाख बार, ऐसे करते करते 80 लाख जन्म भ्रमण करते करते ये इंसान का जीवन प्रभु एक बार उसको ये इंसान का जीवन में चांस देते हैं। इसलिए बड़े भाग्य से ये इंसान का जीवन बच्चों मिलता है। हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे, तो देखो एक अंधा था, वो अंधा डंडा टेकते करते जा रहा था। एक बहुत बड़ा एक महल बना हुआ था जिसमें 84 लाख जिसमें दरवाजा, और उसी दरवाजा में केवल एक ही दरवाजा खुली हुई और सारे के सारे दरवाजा बंद। वो अंधा डंडा टेकते टेकते भूल से कैसे जो खुली हुई केवल एक ही दरवाजा था उसमें कैसे प्रवेश कर गया। वो तो अंधा है और भी निकलने के लिए चेष्टा करता है, जब ऐसे हाथ लगाता है वही बंद हुआ दरवाजा, बंद हुआ दरवाजा, एक दो नहीं तो 1010 नहीं 84 लाख दरवाजा। ऐसे हाथ लगाते लगाते भटकते 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 अभी खुली ही दरवाजा को पास में पहुंचा। इतने में सोचा सारे दरवाजा मेरे को बंद पड़ा हुआ मिला, ये दरवाजा थोड़ी खुली ही होगी, ये भी ऐसे बंद हुआ होगा। उसके शरीर में थोड़ी खुजली मच गई और वो खुजलाते खुजलाते अभी खुली हुई दरवाजा पहुंच गया था और खुजलाते खुजलाते वो खुली हुई दरवाजे को पार हो गया। फिर जब ऐसे हाथ लगाया देखा वो एक बंद हुआ दरवाजा। लगता है आप लोग समझ गए हैं। इसका तात्पर्य है जीव भगवान को भूल करके अनादिकाल से 14 ब्रह्मांड और 84 लाख जन्म उसको भटकना पड़ता है। ऐसे भ्रमण करते 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 कभी राजा कभी प्रजा, कभी सुखी कभी दुखी, कभी कीट पतंग, ऐसे भ्रमण करते करते उसको जब ये इंसान का जब जन्म मिला है तब यही खुली हुई दरवाजा है, यही खुली हुई दरवाजा है, अभी पहुंच गया यहाँ पर। लेकिन अभी उसका शरीर में थोड़ा खुजली मच गई, कहते खुजली क्या है, खुजली वो है वो दूसरे दूसरे जीवन में जैसे खाना पीना सोना संतान को जन्म देना उनको लालन पालन करना, कहते यह जीवन पा करके भी वो वही काम में लग गया। इसलिए भागवत में बताया कहते तरव किम न जीवंती भस्राम की न संतुत न खादंती न मेहंती किम ग्राम पसवा परे। कहते भैयाओं अगर ये दुर्लभ जन्म पा करके खाना पीना संतान को जन्म देना उनको लालन पालन करना अगर बड़ी भारी काम होता तो ऐसे कौन सा जानवर नहीं जो कि जीवन पा करे खाते नहीं पीते नहीं संतान को जन्म नहीं देते अपना परिवार को मेंटेन नहीं करते, ऐसे कौन सा जानवर नहीं। सारे जानवर तो खाते पीते सोते बच्चों को जन्म देते हैं। अगर ये दुर्लभ जीवन पा करके अगर हम उसी काम में ही लग गए फिर तुमने कौन सा बड़ी भारी काम किया, ये तो कोई बड़ी भारी काम नहीं। ये तो जानवर जीवन में भी ये विषय भोग प्राप्त होता है, लेकिन जो हरि की भजन है प्रभु की जो आराधना केवल ये इंसान का जीवन में ही प्राप्त है। इसलिए अभी हमारा ये खुली हुई दरवाजा है, इसलिए ये दरवाजा को हमको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, पार नहीं होनी चाहिए। इसी जीवन मुक्ति का द्वार है, इसलिए इसी जीवन में ही हम हरि की आराधना करके ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए हम निकल सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा बच्चों प्रभु की भजन हमको 5 साल से करनी चाहिए। कहते क्यों बच्चों, बच्चों ने कहा क्यों प्रहलाद, तो उन्हें 2-3 उदाहरण दिया। कहा जैसे एक एक कांचा बांस है वो जब कच्चा होता है जिधर टेढ़ा करो उधर टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन बांस जब पक जाती है वो फिर टेढ़ा नहीं होती, वो टूट जाती है। जैसे छोटा पौधा है एक जगह से उठा करके दूसरे जगह में लगा वो जम जाएगा, लेकिन उसका जड़ जब ज्यादा गहरा चला जाता है फिर उठा करके दूसरे जगह में जमाओ फिर नहीं जमता है। जैसे कि कोरा कागज है उसको ऊपर में जो एक बार हम लिखेंगे वो तो स्पष्ट रूप में दिखेगा, एक बार लिखने के बाद जब 2 बार लिखने जाएंगे फिर नहीं लिखता है फिर दिखता नहीं। उसी तरह प्रभु का जो भजन है ये बचपन से ही प्रभु का भजन करनी चाहिए। इसलिए बचपन में से ही हम बच्चों को लिखाते हैं पढ़ाते हैं। इसलिए प्रह्लाद महाराज ने कहा था, देखो तुम बोलते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, तुमको एक अंक की हिसाब देता हूँ, ये चीज को समझो। कहते बताओ, कहते मानो एक इंसान 100 साल तक जिंदा रहे। कहते हाँ। कहते वो तो 50 साल तक वो सो सो करके 50 साल उसी में ही बीत जाता है। अभी उसको 50 साल बाकी रह गया। 50 सालों में 10 साल तक तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता है, वो भोला भाला होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। और कितना साल बाकी रहा? अभी 40 साल बाकी रह गया। कहते 20 नहीं तो 25 साल के लिए एमए पीएचडी डॉक्टरेट कोई एक एक्सपर्ट होने के लिए उसको चाहिए। अभी उसमें चला गया फिर 10-15 साल, कितना साल बाकी? करीब 30 साल बाकी रह गया। कहते 80 साल से लेकर के 100 साल तक जो जीवन है वो किसी काम का नहीं। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, गला कफ से जम गया, कोमर टेढ़ा हो गया, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी कलयुग में तो 100 साल भी जिंदा नहीं रहते, 80-60 इसी में और इसी में चले जाते हैं। इसलिए प्रह्लाद महाराज ने कहा, बच्चों बताओ वो बीच में जो केवल 10 साल बाकी रह गया उसको कितने कामनाएं, फैक्ट्री बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, बाड़ी बनाएंगे, कितनी अपुरंत कामनाएं। प्रह्लाद महाराज ने कहा, बच्चों ये बताओ फिर तुम भजन कब करोगे? अगर बचपन से ही भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? प्रह्लाद महाराज ने कहा, तुम लोग जो बोलते हो रिटायर्ड लाइफ में भजन करोगे, सरकार क्यों रिटायर करता है? देखता है ये किसी काम का नहीं, बेकार है, अभी 8-7 घंटा नहीं बैठ सकता है, इसलिए सरकार उसको रिटायर कर देता है, अरे किसी काम का नहीं। जब उसको साधारण सरकार किसी काम का नहीं उसको रिटायर कर दिया, और सबसे जो दुर्लभ है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सोपी महामुनि, करोड़ों करोड़ों में कोई एक विरले होते हैं जो कि मेरा भजन करने वाले, जो सबसे दुर्लभ मेरा भक्ति है, फिर रिटायर्ड लाइफ में कैसे भजन करेगा? इसलिए प्रह्लाद महाराज ने मना कर दिया, जो बोलते हैं बुढ़ापा में भजन करेंगे उनका भजन नहीं हो सकता है, कठिन है। आप लोगों को स्वयं आपका मन को ही आप पूछिए, बुढ़ा लाइफ उम्र में जब आप माला लेकर के प्रभु का नाम करते हो उसमें मन क्या सोचता है? सारा जीवन भर जो अपने किया है वही रील ही हृदय में आता है, सारा जीवन में हमने क्या किया किया। इसलिए प्रह्लाद महाराज ने कहा, बच्चों भगवान का भजन बचपन से करनी चाहिए। यही से उन्होंने कथा सुनाया, एक प्रह्लाद था, पूरा के पूरा क्लास में जितना स्टूडेंट थे सारे के सारे प्रह्लाद हो गए। बच्चों ने कहा, प्रह्लाद तेरी कथा तो बड़ी मीठी मीठी कथा है, कथा तो बड़ा अच्छा लगता है, प्रभु की भजन अच्छा लगता, लेकिन तेरे पिता को बड़ा डर लगता है, तेरा पिता तो राक्षस है, अगर हम प्रभु का नाम लेंगे तो पता नहीं अभी हमको मार डालेगा। प्रह्लाद ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मेरे को जैसे प्रभु ने रक्षा की तुम लोगों को भी ऐसे रक्षा करेंगे, इसलिए चलो। देखो कोई अच्छा चीज होता है ना, अकेले नहीं खानी चाहिए, सभी को खिलानी चाहिए। कहते प्रभु का जो नाम है भजन है अकेले अकेले नहीं खानी चाहिए, चलो बजरा और ढोलकी लो, मृदंग लो, चलो अली गलियों में हम घूम फिर करके हरि कीर्तन करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आकर के सारे भक्तों को लेकर अली गलियों में कीर्तन किया, फिर तो प्रह्लाद सारे बच्चों को लेकर के सर्वत्र उन्होंने यही हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया है, जैसे हमारे महाराज भक्त लोग सर्वत्र कृष्ण कथा के प्रचार करते हैं। इसलिए हमें प्रह्लाद बोले चलो हम कीर्तन करते हैं, फिर तो सारे बच्चों को लेकर कीर्तन करने के लिए गए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा।
I'm जी को पास में लाए, कहता अपना बेटे को प्रश्न कीजिए, हमने बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया। पिताजी जब उनको प्रश्न किया, बेटा बताओ गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया, प्रह्लाद महाराज तो उनको गुरुजी कौन है, उनका गुरुजी संधामर्ग नहीं, उनको गुरुजी तो नारद है। आपको पता है जिस समय हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने के लिए चला गया, इतने में इंद्र आकर के उनको माता जी को पकड़ करके स्वर्ग में ले जा रहा था। इतने में नारद जी आए, कहते क्या कर रहे हो, कहते मेरे मन में कोई गलती भावना नहीं, एक हिरण्यकश्यप सारा दुनिया में टहलका मचा दिया, अगर उसको पुत्र होगा तो अभी पयादु गर्भ में के संतान है, अगर ये पुत्र होगा तो फिर पिता और बेटे मिल करके सारा दुनिया को तो ध्वंस कर डालेंगे, इसलिए हम उसको ले जा रहा हूँ, जब उसको पुत्र होगा उसको मार करके उसको मैया को मैं छोड़ कर चला जाऊंगा। नारद जी ने कहा, इंद्र ये कयादु गर्भ में साधारण कोई जन्म लेने वाले नहीं, भगवान का परम भक्त श्री प्रह्लाद महाराज जन्म लेने वाले हैं, तुम क्या मारोगे, विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं जन्म हुए उसका के बाल भी बलता कर सके। तब उन्हें उसी समय नारद जी अपना आश्रम में ले गए और उन्हें 60,000 साल तक ये प्रह्लाद महाराज को उपलक्ष्य करके उन्होंने कथा सुनाया, इसलिए मातृ गर्भ में रहते हुए उन्होंने सारे ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। जब पिताजी ने प्रश्न किया उनको उत्तर स्वरूप दिया कि पिताजी ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये जीवन पा करके हरि की भजन करनी चाहिए, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का पूजन, उसका अर्चन और उनके चरण में आत्मनिवेदन, जो नवविद्या भक्ति है, अगर ये नवविद्या भक्ति के द्वारा कोई प्रभु को आराधना करता है उसका जीवन सार्थकता है। इसको पिताजी को बड़ा क्रोध आ गया, फिर तो उन्होंने मारने के लिए बहुत प्रयास किया, आप लोगों को पता है कितने तरह तरह से उन्होंने मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसका एक बाल भी बंका नहीं कर सका, क्योंकि भगवान जिनको रक्षा करने वाले उनको जगत में क्या उसको बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं कर पाए। स्वयं हिरण्यकश्यप भी प्रयास कर लिया, लेकिन जब किसी तरह से उसको मार नहीं सके, तो प्रह्लाद ये बताओ मेरे डर के मारे सारा विश्व ब्रह्मांड कांप उठता है, लेकिन तू एक 5 साल का बच्चा, लेकिन तू डरता नहीं, कोई डर भय नहीं, तेरे को रक्षा करने वाले कौन है, कहते मेरे को रक्षा करने वाले ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो प्रभु हरि है, आपको जो रक्षा करते हैं वो मेरे को भी रक्षा करते हैं, कहते कहाँ बताओ, कहते ये बताओ कहाँ नहीं है, कहते स्तंभ में है, कहते स्तंभ में तो मेरे को दिख रहे हैं, वो बैठी करके प्रभु खिलखिला करके हंस रहे हैं, कहते तेरे प्रभु को अभी दिखाता हूँ, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। फिर तो उन्होंने गदा लेकर के जब एक प्रहार किया, प्रहार करते ही एकदम स्तंभ दो बीच में दो टुकड़ा हो गया, बड़ा भयंकर शब्द निकला, और देखते देखते स्वयं नरसिंह भगवान वहां से प्रकट हो गए, बोले श्री नरसिंह भगवान की। अभी उन्होंने हिरण्यकश्यप को साथ में लड़ते लड़ाते, हाँ ठीक जब शाम का समय हुआ, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेते हैं ऐसे पकड़ करके उन्होंने दहली में लाए और जंघे के ऊपर रख करके जब उसको मारने जा रहे थे, हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु मुझे नहीं मार सकते हो, कहते क्यों, कहते मेरे पास में बहुत सारे वरदान है, कहते बता क्या वरदान है, कहते प्रभु मेरे पास में वरदान है, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, कहते अच्छे मानुष अच्छे तरह से देखो ये कौन सा समय है, वो दिन नहीं रात नहीं ठीक शाम का समय, कहते प्रभु तभी नहीं मार सकते हो, कहते क्यों, कहते बहुत और भी वरदान, बोले क्या है, कहते मैंने यह वरदान लिया था घर में नहीं मरूंगा बाहर में नहीं मरूंगा, कहते अच्छे तरह से देख कहां पर हो, ठीक दहेली में, घर में नहीं बाहर में नहीं, कहते प्रभु तभी नहीं मार सकते हो, कहते क्यों, कहते ये वरदान था मैं आकाश में नहीं मरूंगा और पृथ्वी में नहीं मरूंगा। कहते अच्छे तरह से देख तुम मेरे जंगे के ऊपर में हो, तुम आकाश में नहीं धरती में भी नहीं है। कहते और भी वरदान है, कहते क्या वरदान, कहते मेरा यह वरदान था इसी महीना में नहीं मरूंगा। कहते अच्छे तरह से याद करो ये कौन सा महीना है, वो अधिक महीना जिसको मल मास कहते हैं। कहते मल मास पुरुषोत्तम महीना था, वो 12 महीना से अलग है। कहते प्रभु तब भी नहीं मार सकते हैं। कहते बता क्या वरदान है, कहते प्रभु मेरे पास वरदान है मैं किसी अस्त्र से नहीं शास्त्र से नहीं और ब्रह्मा जी का कोई सृष्ट प्राणी को द्वारा नहीं मरूंगा। कहते अच्छे तरह से मेरे को देख, ब्रह्मा मेरे को सृष्टि किया ना, मैं ब्रह्मा को सृष्टि किया हूँ, मैं ब्रह्मा जी का बाप हूँ, ब्रह्मा मेरे को सृष्टि नहीं किया, मैं ब्रह्मा को सृष्टि किया हूँ, अच्छे तरह से देख। कहते प्रभु तभी नहीं मार सकते। कहते क्यों, कहते किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा। कहते मेरे नाखून तेरे लिए काफी है। बस इतना बोल करके उन्होंने अपना नाखून को द्वारा उनको फाड़ दिए और उन्होंने उनको सारे नारी रूप को पहन लिया। बोले से नरसिंह भगवान की। कहते उसी समय नरसिंह भगवान का इतना भयानक स्वरूप था, ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र कोई भी सामने नहीं आ पा रहे थे, कोई नहीं आ पा रहे थे। डर के मारे वहां सारे को सारे भाग गए। कहते अब प्रभु को कैसे सांत्वना किया जाए। जब प्रह्लाद को बोले प्रह्लाद तुम्हारा लिए ही प्रभु का अवतार है, तुम ही प्रभु को संतुष्ट कर सकते, जाओ प्रभु को सांत्वना दो संतुष्ट करो। जब प्रह्लाद महाराज सामने आए जैसे शेर के सामने अपना बच्चे आने पर एकदम शेर का क्रोध पर पानी पानी फेर जाता है, ऐसे ही नरसिंह भगवान का सारे क्रोध दूर हो गया और तो प्रह्लाद महाराज को उन्होंने गोद हाथ में उठा कर गोद में बैठा करके उनको चाटने लगी। बोले प्रह्लाद मेरे को आने में देर हो गया ना, मेरे लिए तुमको कितना कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए मेरे को माफ कर देना। कहते प्रभु आप तो कृपा करके मेरे लिए अवतार हुए हो भगवान का, प्रह्लाद तेरे को मेरे की भयंकर रूप देख करके डर नहीं लगता है। प्रह्लाद ने कहा प्रभु शेर दूसरे के लिए शेर है लेकिन अपना बच्चे के लिए शेर नहीं, अपना बच्चे तो ऊपर में कूदते रहते हैं फुदकते रहते हैं, मैं तो आपको बच्चा हूँ। प्रभु ये संसार का स्वरूप देख करके मेरे को डर लगता है, आपका स्वरूप से डर नहीं, आप तो मेरे पिताजी हो। भगवान ने कहा प्रह्लाद तू वर मांग लो। भगवान प्रह्लाद महाराज ने कहा प्रभु अगर वर देना चाहते हो यही वरदान दीजिए, मेरा पिता बड़ा दुष्ट था, मेरे पिताजी को आप मुक्त कर दीजिए, मेरे पिताजी को नरक में मत भेजो। भगवान का प्रह्लाद तेरे जैसे संतान जिन खानदान में जन्म होता है जानते हो, एक वैष्णव एक भक्ति करने वाले बेटा अगर किसी खानदान में जन्म लिया कितने उपकार और कितने कल्याण जानते हो। तो भगवान कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा वसतीश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषां जेषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। कहते किसी खानदान में केवल एक ही वैष्णव संतान जन्म ले लिया भजन करने वाले सुख रूप में। भगवान कहते कुलम पवित्रम उसको 21 पीढ़ी ही भगवत धाम में पहुंच जाते हैं, उनको भजन करने का जरूरत नहीं। जननी कितार था जो माता पिता उसको जन्म देते हैं, कहते बेटा जन्म होने का पहले वो पिता माता का उद्धार हो जाता है। वसुंधरा वसतीश्च धन्या जिस पृथ्वी पर वो संतान वो साधु जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी धन्य धन्य हो जाती है। और नृत्य स्वर्ग पितर पितर शाम उनका जितने पूर्वज हम लोग जहाँ पर है वहीं पर हाथ उठा करके नाचना प्रारंभ कर देते हैं। हमारा अहो भाग्य है हमारे खानदान में एक भक्ति करने वाला बेटा जन्म हो गया, अभी हमको कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, अभी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। वो वहाँ पर नाचना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चे भजन नहीं करते हैं किसी खानदान में भजन नहीं करते बच्चे हमारे जितने पूर्वज हैं लोग उनको अभिशाप देते हैं, कहते ये कुलांगार कहाँ से जन्म हो गए, प्रभु का भजन नहीं करते हमारा उद्धार नहीं होता। इसलिए जितने पूर्वज हों वो चाहते हैं हमारे खानदान में जितने बच्चे आए हैं वो सारे के सारे भगवान की शुद्ध रूप में भजन करे वो चाहते हैं। इसलिए जैसा हम कुल वैष्णव नाम है जिस कुल में एक भक्ति करने वाले जन्म हो गया, हमारे दूसरे ग्रंथ में बताया जब वो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के हाथ उठा कर वो नाचता है, जिस हम लोग नाचते हैं ना ऐसे हाथ उठा करके जब नृत्य करता है स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है, इतने प्रभाव है। और जहाँ उसको दृष्टि जितना दूर तक उसको दृष्टि फैल जाता है उतना दूर तक जितने अमंगल भाग जाते हैं, और ये पृथ्वी तो इतने खुश हो जाती है उनका चरण स्पर्श पा करके, मेरा जीवन धन्य है। एक अगर वैष्णव एक भक्ति करने वाले बेटा अगर जन्म हो गया तो, इसलिए प्रह्लाद महाराज ने कहा प्रभु सारा दुनिया का पाप की बोझ मेरे सिर पर दे दीजिए, मैं नरक भोग करूं और ये सारा विश्व ब्रह्मांड को आप भक्ति दे करके इनको पूरा के पूरा उद्धार कर दो, मेरे को वही वरदान दीजिए। देखो भक्ति करने वाले हृदय में कितना शुद्धता है, उन्होंने अपना पिता माता का भी कल्याण मांगा, लेकिन इसी जगत में देखो अगर पिता माता इधर उधर कर दिया थोड़ा बेटा के लिए, बेटा तो सोचेगा पिता माता कब मर जाए सारे संपत्ति को हड़प ले। लेकिन देखो हिरण्यकश्यप ने क्या अत्याचार नहीं किया प्रह्लाद महाराज के ऊपर में, लेकिन प्रह्लाद महाराज क्या मांग रहे हैं, प्रभु हम मेरे पिता को नरक में मत भेजा करो, मेरे पिताजी को आप अपना चरण में स्थान दे दीजिए। तात्पर्य है हम लोगों को भी बच्चों को भगवत भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए, अगर बच्चे प्रभु का भजन करते हैं वो जरूर बड़े होकर के पिता माता का सेवा करेंगे ही, ये श्योर है, ये करेंगे ही, क्योंकि बचपन से ही उसको ऊपर में भक्ति की प्रभाव पड़ा है। अगर बच्चों को भक्ति की शिक्षा नहीं दिया फिर बड़े होकर के आपको पता है क्या करेंगे, मरने का पहले ही सारे संपत्ति को हड़प लेंगे। इसलिए प्रह्लाद महाराज चरित्र दिव्य चरित्र है, उन्होंने अपना जीवन में शुद्ध रूप में भगवत भक्ति किए हैं। इसलिए आप लोग भी प्रह्लाद महाराज ने जो उपदेश दिया प्रभु का भजन कौमार, मतलब 5 साल उम्र से ही प्रभु को भजन करनी चाहिए, बुढ़ापा में भजन नहीं होता है। इसलिए आप लोग अभी से हाँ तृणम चतेत न पतेत अमृत जावत, मतलब अभी से ही प्रभु का भजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही खुली हुई दरवाजा है, इसी जीवन में ही हम संसार चक्र से निकल करके प्रभु के चरण में पहुंच सकते हैं। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
बहुत हरी कथा आप लोगों ने श्रवण किया, अब आगे कथा पर चलें।
यशोदा मैया कृष्ण के लिए रुचिकर भी हो, क्यों डांटी फटकारना भी उसका भक्ति ही है, ये मैंने बतलाया। कृष्ण को लाना भी उनके कल्याण के लिए समझती है, उनको भगवान नहीं मानती। दूसरा उदाहरण है चारुण मुष्टिक कृष्ण कंस के मल्ल हैं, मथुरा में कृष्ण को बलराय को मारने के लिए चारुण मुष्टिक दक्षिण के मल्ल उसने रखे थे। जब उनके साथ में मल्ल युद्ध होने लगा तो कृष्ण को मारने के लिए जब उन पर मुष्टिका इत्यादि का प्रहार करते थे, आज कृष्ण को बहुत आनंद मिलता था, आज बहुत दिनों के बाद में मल्ल युद्ध आस्वादन करने का मुझे मौका मिला। किंतु ये कृष्ण का प्रसन्न होना ये भक्ति नहीं है, क्यों चारुण मुष्टि इत्यादि सब कृष्ण को जान से मार डालना चाहते थे। कृष्ण को भले ही थोड़ा सा उसमें आनंद मिल रहा है, रसास्वादन कर रहे हैं, कभी ये भक्ति नहीं। इसलिए अपने लिए हो या कृष्ण के विरोधी भाव लेकर के जो हम कुछ करते हैं वो भक्ति नहीं है, भले ही कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, हमने अपनी भक्ति की परिभाषा में बतलाया अपने तन मन वचन से भगवान के प्रति संबंध ज्ञान से युक्त होकर के ममता युक्त होकर के उनकी सेवा करना है। प्रह्लाद महाराज जी का जीवन चरित्र आप लोगों ने सुना, कितना उच्च कोटि का है, वे मुक्त उत्तम महाभागवत हैं। किंतु जब सेवा की दृष्टि से देखते हैं तो उन्होंने नृसिंह भगवान की क्या सेवा की, उनको खिलाया पिलाया, न उनका पैर दबाया, न कुछ और सेवा की। तन से क्या सेवा की, मन से थोड़ी सी प्रार्थना इत्यादि की, स्तव स्तुति तो की, किंतु अपने इंद्रियों से किसी प्रकार की सेवा नहीं कर सके। इसलिए उत्तम भागवत होने पर भी इनसे भी श्रेष्ठ भक्ति है। जैसे महाराज
क्या
अम्बरीश जी, भागवत में ये वर्णन है, उसी की भागवत कथा है। वो अपने मन को भगवान की भावना में लगाते, पैरों से उनके तीर्थों में जाते और भ्रमण करते, वृंदावन ब्रजमंडल की परिक्रमा इत्यादि करते, हाथों से स्वयं भगवान का अर्चन बंदन करते, नौकर के द्वारा किसी को महीना दे करके वेतन दे करके ठाकुर जी की सेवा नहीं कराते थे, स्वयं अपने आप उनका अर्चन सेवन पूजन इत्यादि करते, शरीर से लंबे होकर के भगवान को भक्तों को साष्टांग प्रणाम करते थे, उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती थी। और रहते कहां थे, यद्यपि मध्य प्रदेश में उज्जैनी में उनका राज्य था, किंतु अधिकतर वो वृंदावन में रहते, मधुबन में, मथुरा जिसका नाम है मधुबन, और परिक्रमा करते, नंदगांव बरसाना इत्यादि में जाते, वहां कृष्ण की लीलाओं को जानते सुनते समझते। उनकी भावना क्या होगी कृष्ण में, प्रहलाद महाराज की भक्ति है नृसिंह देव में, और अम्बरीश महाराज की भक्ति है कृष्ण में। कौन कृष्ण में, ब्रज के कृष्ण, दोनों में तत्वतः अंतर नहीं होने पर भी कृष्ण ही नृसिंह भगवान के रूप में भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए इनका वैभव प्रकाश कहा जाता है। इसलिए कृष्ण की सेवा करने वाले अम्बरीश महाराज की भक्ति कुछ प्रहलाद महाराज जैसे उत्तम कोटि की मानी जाती है। यद्यपि प्रहलाद महाराज जी मुक्त हैं, ये मुक्त नहीं है, किंतु अम्बरीश महाराज जी सब प्रकार से कृष्ण की समस्त इंद्रियों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु उनसे भी श्रेष्ठ है। भक्ति का ममता के ऊपर में भाव रहता है। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के भगवान को भूख लगती है, फल मूल लेकर के राम की सेवा करते हैं। हनुमान जी के राम स्वयं भगवान हैं, थक जाते हैं, उनका पैर संवादन करते हैं, जब वो थक जाते हैं चल नहीं पाते तो अपने कंधों को लेकर के उनको चलते हैं। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। और संबंध क्या है, दास और प्रभु का संबंध। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु हैं और उनके दास हैं, ऐसे अनन्य दास हैं। कृष्ण के स्वरूप में बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे सहजी, यदि वही कृष्ण राम हो करके बुलाएंगे तो आ जाएंगे। एक समय की बात है, द्वारका में कृष्ण जी थे, उन्होंने गरुड़ जी से कहा हनुमान जी को बुला लो। गरुड़ जी गए किम पुरुष में, अर्थात आज का तिब्बत जो है, वहां हनुमान जी का निवास बतलाया जाता है। कजाक को श्री राम बुला रहे हैं, अच्छा मैं आऊंगा। आए नहीं,
कृष्ण बुला रहे हैं,
कृष्ण बुलाया तो कृष्ण ने बुलाया नहीं आए। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण गरुड़ जी से बोला अच्छा जाओ कहना कि राम बुला रहे हैं। रुक्मणी जी को सत्यभामा कहा तुम लक्ष्मी बन जाओ सीता बन जाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया मैं सीता नहीं बनती। तो उन्होंने रुक्मणी जी को कहा तो रुक्मणी जी ने झट सीता जी का रूप बना लिया और वो राम बन गए। गरुड़ जी को कहा जैसे अभी जाओ बुलाओ, वो गए। किसने बुलाया? श्री रामचंद्र जी। अच्छा तुम चलो मैं आ रहा हूं, मुझे हमारे कंधे पर चलिए, नहीं तुम चलो। तो और वो इतने वेग से गए, भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, उनको खुश किया, बातचीत करके आधी दूर लौट करके आए तो गरुड़ जी भी जा रहे हैं इतनी तेजी। ये हनुमान जी कौन है? स्वयं शंकर हैं। हनुमान बन करके राम की सेवा करते हैं, इसलिए इनकी सेवा बहुत उत्तम कोटि की है। किंतु हां एक बात है, राम के कंधे पर बैठेंगे कि नहीं? नहीं बैठ सकते। अपना जूठा राम को देंगे कि नहीं? नहीं दे सकते। राम का आलिंगन करेंगे कि नहीं?